بچوں کا دل ہے گاتا، یہی گیت گنگناتا، تجھ سے جدا نہ ہوں گے، تجھ سے خفا نہ ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر تیرے قدموں پر چلی
शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की मीठी मुरली सुनते हैं। 14th नवंबर 2022। और 14th नवंबर आज का दिन बहुत स्पेशल डे है, ये तो मुझे भी पता था, चिल्ड्रंस डे है नहीं वही। लेकिन कल शाम को यहाँ पे एक सेशन हुआ ना हेल्थ एंड हैप्पीनेस, उसमें से मुझे एक नई बात पता चली कल। कौन सा? हाँ, इट्स हैप्पी चिल्ड्रंस डे इंडिया में, भारत में, लेकिन विश्व में 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो आप में से कौन कौन है जो बहुत मीठे हैं, वो जरा हाथ उठाओ। अरे वाह। अच्छा, मीठे बच्चे भी हैं और डायबिटिक भी हैं। अच्छा, तो कहा, कहते हैं कि आज के दिन में ना सर फेडरिक का जन्म हुआ था, एंड द पर्सन हु डिस्कवर्ड इंसुलिन। जैसे टुडे इट इज आल्सो द वर्ल्ड डायबिटीज डे। कितनों को पता था कि 14 नवंबर इज द वर्ल्ड डायबिटीज डे, वो हाथ उठाओ। कितनों को नहीं पता था, वो हाथ उठाओ। तो स्वामी भाई की तरह आप भी हो। मुझे भी नहीं मालूम था, कल शाम को पता चला। ओह ग्रेट। तो आज के दिन देखो बाबा दोनों को याद करता है। बाबा मीठे मीठे, हम लोग सब बहुत मीठे हैं ना, बच्चे भी हैं, तो बाबा हर दिन कितना स्वीट चिल्ड्रन करके बोलते हैं। चलिए सुनते हैं मीठे बच्चे। श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन धारणा कर। श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है, अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। शुद्ध घमंड में रहना है मतलब क्या करना पड़ेगा? अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहना, राइट? तो स्वमान और अहंकार में अंतर ये है। अहंकार किस बात का होता है? हाँ, देह के साथ रिलेटेड, विच इज नॉट अ रियालिटी, वो सत्य है ही नहीं, कुछ समय तक रहेगा, चाहे हमारा पोस्ट हो, चाहे हम जो भी बातें हैं ना, हमारे पास बहुत सारा धन हो, या हमारे पास बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हो, या हमारी बहुत सारी विशेषता हो, जो भी हो, वो सब कनेक्टेड विद देह है, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहेगा। स्वमान इज विच इज शाश्वत, मैं आत्मा हूं ये शाश्वत है, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं ये शाश्वत है, मैं आत्मा बहुत शुद्ध हूं, मैं आत्मा बहुत प्रेम स्वरूप हूं, दिस इज शुद्ध घमंड। और सेवा में इसको कैसे लेकर आना है, बाबा ने मुझे सेवा दी है, मुझे इतना सौभाग्य मिला है, राइट ना। तो ये सब जब हम इस बात को रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड शुद्ध घमंड। अच्छा, आज का प्रश्न है, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है। उत्तर, गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए, गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं, सबसे बड़ी भूल यही है, सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पति पावन बाप की जगह, जो गीता में पति पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है, इसी बात को सिद्ध करना है। इसके लिए, इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाप की महिमा, बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है, बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। बाबा की कौन सी महिमा है? प्रेम का सागर, बहुत अच्छा। और श्री कृष्ण की महिमा? अरे वाह, आप सभी तो बुद्धिमान हो, करेक्ट, राइट। तो बाबा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा कितनी अलग है, राइट। गीत है, कौन सा गीत सुना? मरना तेरी गली में, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए, किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहे तो ये सब बातें हो ना सके। वह है सतयुग का प्रिंस, गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता किसने सुनाई? गीता परमपिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार इस बात पर है, एक बात को समझ जाएं तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं सब झूठे सिद्ध हो जाएं। यह है सब भक्ति मार्ग के, इनमें कर्म कांड तीर्थ यात्रा जप तप आदि की कहानियां लिखी हुई है। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो वह तो दरकार नहीं, ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने ही दी है वही नॉलेज है, सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है जो अब प्रायः लोप है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परमपिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। तो श्री कृष्ण भी बहुत मेहनत की है, तो लोग जो उनसे इतना प्यार करते हैं ऐसे ही नहीं करते, करेक्ट। पढ़ते समय नाम रूप और है और फिर जब राज्य पाया तब और है। तो पढ़ते वक्त कौन सा नाम था? पढ़ते वक्त कौन सा नाम था? ब्रह्मा बाबा। और पढ़ने के बाद फिर पास हो गए तो कौन सा टाइटल मिला? श्री कृष्ण मिला। पहले पतित है फिर पावन बना है, ये सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे, पतित पावन है ही एक बाप। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात श्याम बन गई है, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। ये सिद्ध कर समझाने में युक्तियां चाहिए। तो कैसे समझाएंगे? अगर श्री कृष्ण का वो परम भक्त होगा तो कैसे समझाएंगे? है ना, समझाना। कुछ लोग तो इतने भक्त होते हैं कि कुछ है ना। मैं एक बार बताया, मैं कहां गया था एक बार, मथुरा में। तो मथुरा में श्री कृष्ण के बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं। तो उसमें एक भाई ने मुझे वो मंदिर में लेकर गए और कहते हैं इतने वर्षों से वहां पर हरे कृष्णा 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 का इतने वर्षों से नॉन स्टॉप 24/7 जब तक चल रहा है। तो उस मंदिर की वो महिमा है। कोई ना कोई आकर बैठते हैं, जैसे हम होता ना हमारा अखंड योग है ना जनवरी महीने में होता है, तो बाबा के कमरे में है ना बहने सेट करती है कि 24/7 कोई ना कोई बाबा के कमरे में बैठना चाहिए। तो हम तो 18 दिन करते होंगे या एक महीना करते होंगे, वहां तो वर्षों से चल रहा है। और सिर्फ ऑडियो वाला नहीं, कोई ना कोई आकर बैठेगा और मिनिमम 5-10 तो बैठे रहते हैं। तो इसलिए उस मंदिर के वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग इतने पावरफुल हैं। तो भाई ने मुझे खास वो बताकर वो लेकर गए और बोला यहाँ के जो स्वामी जी है ना बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं और हम लोग बीच बीच में मिलते रहते हैं, तो आप आए हो तो खास मिलना। और फिर बोला स्वामी भाई थोड़ा गीता वीता के बारे में बताना, हम लोग बताते तो बिल्कुल सुनते नहीं है, तो आप इतनी दूर से आए हो तो आप बताना। मैं कहा ठीक है, मिलते तो हैं। तो जैसे उनके ऑफिस में गए तो मैंने कहा ओम शांति, तो वो तो हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा, वही गीत था। तो फिर मैं बैठा, मैंने कहा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर श्री कृष्ण की थोड़ी महिमा की तो बड़े मुस्कुराए, है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मुझे किसी तरह से मैंने कहा भगवद गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, हरे कृष्णा। फिर मैंने धीरे से कहा कि भाई वो गीता का जो ज्ञान जो है ना आज सारी दुनिया को बहुत जरूरत है। हर बात बोलकर मैं पॉज करता हूँ तो बड़े मुस्कुराते हरे कृष्ण। फिर मैंने कहा सिर्फ अर्जुन को क्यों सुनाए, हमको और आपको सबको जरूरी है ना। फिर मैंने धीरे से मैंने कहा जब अर्जुन को कितना भी समझाया गया नहीं समझा, जब उन्होंने है ना भगवान का विराट स्वरूप देखा, वो परम ज्योति है, तो परम ज्योति हम सर्व आत्माओं के पिता, हरे कृष्ण 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 हरे। तो मैंने अब कितना भी बोले वो हरे कृष्ण को छोड़ नहीं रहे। तो मैंने इस भाई को कहा चले, हाँ चलो। तो मैंने कहा स्वामी जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम फिर मिलते रहेंगे, हरे कृष्ण। मैं बाहर निकला तो मैंने इस बीके भाई को कहा भाई इन सबको है ना श्री कृष्ण है ना गीता का ज्ञान दाता नहीं है शिव बाबा, ये बताना बड़ा मुश्किल लगता है। बोला नहीं स्वामी भाई आपने समझा ही नहीं इस बात को। मैंने कहा क्या? बोला यार देखिए ब्रह्मा बाबा ने तन्नाश बाबा को हर पल हर क्षण याद किए कि आज भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाबा की महिमा वो श्री कृष्ण के स्वरूप में देख रहे हैं। वी शुड ऑल्सो बिकम बाप समान। वो देखो आज वो जब तक को छोड़ नहीं रहे। ब्रह्मा बाबा ने हर पल हर क्षण शिव बाबा को याद करते रहे, बाप समान बन गए, शिव बाबा के समान भी साकार में। तो देखो आज भी उनकी महिमा कितने प्यार से लोग करते ना। तो इसलिए कभी डिबेट में नहीं जाना, बाबा कहते हैं बहुत प्यार से समझाना उनको, क्योंकि श्री कृष्ण, हम आप में से कितनों को श्री कृष्ण से बहुत प्यार है वो हाथ उठाओ। हम सबको प्यार है बहुत ही, हम तो कितना स्नेह कितना प्यार से श्री कृष्ण को याद करते हैं। तो अगर कोई कह रहा है तो है ना, उनके प्रति भी बहुत स्नेह प्यार रिस्पेक्ट रिगार्ड ये होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये सिद्ध कर समझाने में युक्तियां चाहिए, फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना है। नंबर वन है ही गीता, सर्व शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता माता। आज बाबा ने माता के रूप में याद किया। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनको उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? ये किसी को पता नहीं और सबके शास्त्रों का पता है। ये जो सहज राज्यों की शिक्षा है वह किसने दी ये सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रदान होती जाती है। ये सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, बाबा फट से कह देंगे। मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान कौन है? परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं। जो आता है वह कह देते हैं बिगर समझ। भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है। तो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़े। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। बनारस के बहुत पुराने भाई थे और बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, है ना, गुप्ता भाई। और खास बनारस तो बड़ा प्रसिद्ध स्थान है और कहते हैं गीता प्रेस भी जो है ना बनारस के नजदीक, तो गीता प्रेस इज वेरी फेमस। वेयर एग्जैक्टली? गोरखपुर में गीता प्रेस, बहुत पुराना गीता प्रेस है, वहां पर वो गीता का प्रिंटिंग होता है। इसलिए बाबा ने कहा, गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में ही जाकर सिद्ध करके समझाओ। हाँ जी, कौन थे, क्या थे? लॉयर थे। अच्छा, यस। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं, क्या उपाय करें जो शांति हो जाए? अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर ये पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते जबकि बुलाते रहते हैं? परंतु पतित पावन को जानते नहीं। अब ये कौन जाकर बताए? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं परंतु है कुछ भी नहीं। मिसाल है ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, क्या सोचा? नंबर वार है, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। वह कह देते कोई भी हो, हैं तो सब भगवान। बाबा कहते हैं भगवान वाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है उनको एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूं। कितना क्लियर है ना, कितना प्यार से बाबा ये कहते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं, आप लोग सब रिपीट करिए, भगवान वाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है उनको एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूं। तो हम सब कौन बैठे हैं यहां पर? अर्जुन बैठे। और क्या बनना है? श्री कृष्ण बनना है। तो अर्जुन से श्री कृष्ण बनना है। तो ये हमारा प्रमोशन होता है। तो जब हम पहली बार बाबा के बच्चे बनते हैं तो अर्जुन, अर्जुन इज टोटली कंफ्यूज्ड, यहां जाऊं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। तो हम सभी मोरलेस कंफ्यूज्ड ही थे, लाइफ को लेकर क्या करना कुछ पता नहीं था। जब बाबा के बच्चे बनते हैं धीरे धीरे, ये गीता सुनते हैं है ना, मुरली सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारा प्रमोशन होता आत्मा का। और हम क्या बनते हैं? गीता गीता सुनकर अर्जुन से धीरे से युधिष्ठिर बनते हैं। युद्ध चल रहा है चारों तरफ लेकिन स्थिर, बाबा पर संपूर्ण निश्चय। इसलिए वो कहानी बताते हैं ना, हम सबको पता है, जब वो अर्जुन का रथ जब वो जा रहा था ना, वहां पर श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे, तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राताश्री ये अर्जुन का रथ कहां जा रहा है? तो फिर युधिष्ठिर भीम से बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं जिसके सारथी हो भगवान उसका रथ कभी भटक नहीं सकता है। दैट इज युधिष्ठिर, जो स्थिर रहता है। तो हम भी है ना धीरे धीरे अर्जुन से स्थिर बनते, क्या क्यों कैसे के हलचल में नहीं, ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, कल्याणकारी है। फिर युधिष्ठिर के बाद हम क्या बनते? श्री कृष्ण बनते। श्री कृष्ण की अवस्था एकदम आनंद की अवस्था, युधिष्ठिर को फिर भी थोड़ा सीरियस दिखाते ना, लेकिन श्री कृष्ण कैसा है? आनंद की अवस्था। आनंद की अवस्था को भगवद गीता में क्या क्या लिखा गया है? हे अर्जुन, सुख दुख मान अपमान जय पराजय निंदा स्तुति ठंडी गर्मी, हे अर्जुन कैन यू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो है आनंद की अवस्था। तो श्री कृष्ण की अवस्था वो थी आनंद की अवस्था। श्री कृष्ण की ब्यूटी, जितना पांडव सेना श्री कृष्ण से प्यार करते थे उतना ही कौरव सेना, बड़ा रिस्पेक्ट था उनको, करेक्ट? तो इट वॉज यूनिवर्सल, हमेशा खुशनुमा, हमेशा मुस्कुराता हुआ। कभी श्री कृष्ण को टेंशन में देखा नहीं, श्री कृष्ण इज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज चीयरफुल, ऑलवेज जॉयफुल, राइट, ऑलवेज ब्लिसफुल। हमको भी ऐसा ही बनना है। तो बाबा यही कहते हैं, वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। ये समझाने और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अब ये शुद्ध घमंड आया है, इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते। पहले ये भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवद गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वो बात ही नहीं है, यह तो यहां माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। कल परसों की भी मुरली में था ना, क्राइस्ट और श्री कृष्ण दोनों का कंपैरिजन बाबा कह रहे थे, करेक्ट ना, क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट और श्री कृष्ण। अच्छा, श्री कृष्ण और कृष्ण में क्या क्या सिमिलैरिटी है बताइए, क्राइस्ट में और श्री कृष्ण में। उस दिन भी मैं कहां पे कथा वहां मैं मुरली सुन रहा पढ़ रहा था, तो मैं बता रहा था, पूछा क्राइस्ट और श्री कृष्ण के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। अच्छा चलो दोनों देहधारी हैं. वेरी गुड. नो दैट्स करेक्ट आंसर. और क्या है? हाँ नाम भी मिलता जुलता है. क्राइस्ट और कृष्ण मिलता जुलता है. राशि भी एक है. अच्छा ओ वेरी गुड. हाँ अच्छा दो अच्छा हाँ दोनों ने कहा कि क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड सन ऑफ गॉड. श्री कृष्ण भी ठीक है वो भी भगवान का ही बच्चा है. वह बहुत अच्छी बात है. और क्या सिमिलैरिटी है? अच्छा हाँ अच्छा क्या सुनना पड़ा? बस सुनना पड़ा सुना मैंने. तो फिर मैंने कहा दोनों ने क्या सुना? तो बहन जी कह रहे दोनों ने गालियां सुनी. ठीक है. श्री कृष्ण की को भी बहुत लोगों ने कुछ कहा और क्राइस्ट को भी कुछ कहा. बहुत ठीक है. वेरी गुड. और अरे वाह दोनों ने मेहनत बहुत की. ठीक है. और एक साइलेंस है और एक साइंस है. अच्छा ओके गुड. अब देखिए दोनों का जन्म को अगर आप देखोगे ना तो क्राइस्ट का जन्म के समय पे भी उनको ना बछड़े बछड़े सब दिखाते ना गाय वाय दिखाते. श्री कृष्ण को भी वही दिखाते. दोनों में दिखाते. अच्छा दोनों के जन्म के समय पर उनको मारने के लिए वहां पे भी राजा बैठा था यहां पे भी राजा बैठा था. करेक्ट. हाँ ये भी राइट बात है ना. दोनों का जन्म रात्रि दिखाते कहीं ना कहीं. हाँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. और उस दिन बाबा की दो तीन दिन की मुरली में बाबा ने यूज किया वो शब्द वर्जिन मेरी. बाबा के महावाक्य थे है ना आपको याद है वर्जिन मेरी. दोनों का जन्म योग बल से जन्म हुआ. इट इज मेडिटेटिव बर्थ. नहीं ठीक है अभी अभी हम हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इट इज मेडिटेटिव बर्थ. कुछ तीन चार महीने पहले जब आमंत्रित भाइयों की भट्टी चल रही थी तो वहां पर सभी आपको पता होगा अपने पूरे भारत देश के जो बहुत सीनियर मोस्ट भाई होते हैं ना तो वो आमंत्रित भाइयों की भट्टी में थे. तो भट्टी तो बहुत साइलेंट भट्टी होती है. बहुत कम क्लासेस होते हैं लेकिन एक डिस्कशन का एक पॉइंट था. डिस्कशन का एक पॉइंट रखा गया. सबको कहा गया कि इस पर आप है ना बीच बीच में है ना इस पर आप लोग चिंतन करना और सामने आकर स्टेज पर आकर बोलना. और उसका जो टॉपिक था टॉपिक ये दिया गया था यही है बाबा की प्रत्यक्षता मात्र शक्ति के द्वारा. यही है बाबा की प्रत्यक्षता मात्र शक्ति के द्वारा. और शुरुआत ही आदरणीय निर्वैर भाई जी ने किया क्योंकि बोला आप करो जो चिंतन का जो था ना तो बोला सब लोग शेयर करना. तो निर्वैर भाई साहब ने सबसे पहले कहा ये तो बाबा ने माताओं के है ना ज्ञान कलश उनको दिया. और उसी समय हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी बने थे. बोला देखो ये भी बाबा की महिमा है कि राष्ट्रपति जो है हमारी बाबा की बच्ची है. ये भी देखो बाबा कैसे काम करा रहा वो भी एक माँ है करके उस कंटेक्स्ट में बताया. अच्छा फिर तीन दिन यही था तो सबको कुछ ना कुछ बोलना है. और शारदा बहन जी बैठे थे वो बोलते हैं अलग पॉइंट बताना है सेम नहीं बताना. अब हम लोग घूम फिर करके क्या बोलेंगे भाई यही तो बोलेंगे. तो तीसरा दिन हमारा वो था तो मैंने कहा भाई कुछ तो अलग पॉइंट होना चाहिए क्योंकि वो कह रहे थे. तो जब मुझे चांस मिला तो मैंने वहां पर आदरणीय जगदीश भाई जी की किताब का रेफरेंस दिया था. हाँ जो लास्ट स्टेजेस पर जगदीश भाई जी ने लिखी थी शायद पिछली बार भी मैंने इसका जिक्र किया था. वो किताब का नाम है स्पिरिचुअल मिसलेनी करकर. स्पिरिचुअल मिसलेनी मिसलेनी का अर्थ होता है जो मिसलेनियस आइटम्स होते हैं ना जो लास्ट में थोड़ा बच जाता है. इतनी मोटी किताब है स्पिरिचुअल मिसलेनी. और उसमें प्रीफेस में जगदीश भाई जी लिखते हैं कि मुझे है ना एक एक पॉइंट पर मुझे एक एक किताब लिखने का मन था लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है. मेरा शरीर शायद है ना वो मदद नहीं कर रहा है. तो सबको मैं मिलाकर मैं ये किताब लिखता हूं आप इसको पढ़िएगा और इसको सेवा में यूज करिएगा. सृष्टि चक्र 5000 वर्ष क्यों है. गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है. ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी जो जो उनको नया नया बाबा की टचिंग मिली है. उसमें पेज नंबर 399 में तीन चैप्टर्स उन्होंने योग बल के बारे में लिखा हुआ है. और उन्होंने जो लिखा है बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि सबसे पहली बार मेडिकल साइंस ने कब इस बात को महसूस किया है कि संकल्प शक्ति के द्वारा जन्म हो सकता है. कौन से साल में सबसे पहले बार वैज्ञानिकों ने, मेडिकल साइंस ने इस बात को एक्सेप्ट किया? आप गेस कर सकते हैं? हाँ, कौन से साल में बताया होगा? हाँ, 1754 के समय पर. चलो वो तो बस एक वो था, लेकिन जो एक्चुअल वर्तमान कंटेम्परेरी टाइम्स में 1955 में एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स बैठे और उन्होंने ये इस बात पर हाइपोथेसिस जनरेट किया. और उन्होंने इसलिए जनरेट किया क्योंकि ऐसे बच्चे उनके सामने आए जिनमें डीएनए में पिता का कोई जीन्स ही नहीं था. तो उन्होंने 1955 में ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, और जगदीश भाई जी अपनी किताब में वो डॉक्टर्स का नाम लिखते हैं, बहुत फेमस फेमस डॉक्टर्स हैं, जो बैठे और कमिटी बैठी ये डिस्कस करने के लिए कि क्या एक मां खुद अपने संकल्प शक्ति से जन्म दे सकती है क्या. और वो इतना साल रिसर्च चलता रहा, 2014 में ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, है ना, लैंसेट जर्नल में पब्लिश हुआ. आज भी हम यही सोचते रहते हैं श्री कृष्ण का जन्म होगा कैसे होगा. मेडिकल साइंस ने 1955 को हाइपोथेसिस जनरेट किया, 2014 में पब्लिश कर दिया कि यस, योग बल के द्वारा जन्म लेना इट इज वेरी मच पॉसिबल. इसे अब हमको यह पुरुषार्थ करना चाहिए, हर दिन अमृत वेले में यह भी एक अपने स्वमान में जोड़ो या वो संकल्प करो. हर दिन बाबा से कहो, बाबा राइट, अभी अंतिम समय चल रहा है, कभी भी हम टक हो सकते हैं, अगला जन्म हमारा योग बल के द्वारा जन्म होना चाहिए. जैसे ही आप यह संकल्प करेंगे तो हमारे जो होवनार मात पिता, जो एडवांस पार्टी की आत्माएं होंगे और जो भी ड्रामा में होगा, वो धीरे 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 इस बात के लिए तैयारी करेंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग. और आपको मैं बताना चाहूंगा, हम लोग ने नवंबर 1 से लेकर नवंबर 21 तक सुबह 5 से लेकर 5:30 बजे तक विशेष इस संकल्प को लेकर जूम पर बैठते हैं, क्योंकि अब ये हमको संकल्प लेना है. तो पहले तो मुझे लगा हम लोगों ने कुछ कहा, फिर ऐसे ही मैं शेयर कर रहा था तो कहा, स्वामी भाई हम लोग जितने लोग हैं ना, सब लोग बैठते हैं मॉर्निंग 5 AM. सो टुडे इज द 12th डे, नो टुडे इज द 14th डे. हर दिन एक एक स्वमान. मैं बहुत अच्छा, आधा घंटे का इतना सुंदर. आज भी मैं यहां बैठ के रूम पे बैठ के कर रहा था 5 AM to 5:30 AM. ये संकल्प करना कि बाबा मैं इतना शुद्ध, इतना स्वच्छ, इतना पवित्र बनूं कि बाबा मेरा अगला जन्म योग बल के द्वारा जन्म होना चाहिए. तो क्राइस्ट का जन्म भी वर्जिन बर्थ बताते हैं, श्री कृष्ण का जन्म भी योग बल के द्वारा होता है. और सोचने की बात है, ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बनने वाले हैं, तो ब्रह्मा बाबा के जो माता पिता से ज्यादा योगी ब्रह्मा बाबा है ना. तो जो आने वाली आत्मा है वो अपने माता पिता को संकल्प दे. और इनिशियल केस में सतयुग में स्टार्टिंग में 900,000 देवी देवताएं होंगे, 900,000 होंगे ना, सिर्फ श्री कृष्ण और राधा जन्म से तो नहीं होगा. तो 900,000 हमको चाहिए. और फिर बाबा ने कितना क्लियर कट मुरली में कहा था, श्री कृष्ण के जन्म के समय पर भी हलचल चलती रहेगी, लेकिन सतयुग 111 जब श्री लक्ष्मी नारायण राज्य गद्दी पर बैठेंगे तब तक ये चलता रहेगा. और ये जो प्रोसेस है ना, धीरे 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 शिफ्ट होगा, अचानक ठक ठक करके नहीं होता है. और इस शिफ्टिंग ऑफ प्रोसेस में है ना आपका और विशेष शांति सरोवर का राइट बहुत बड़ा योगदान है. अपने लिए थोड़ा तालियां तो बजा लीजिएगा. और खास करके कल का जो प्रोग्राम हुआ, बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, उसके लिए विशेष मैं आदरणीय कुलदीप दीदी जी का और सभी आप सभी जो निमित्त आत्माएं बने उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा. कि कितने एक्सपेक्टेंट, करीब 200 के आसपास जो है ना मातृत्व की जो यात्रा में, और वो इतने खुश हुए. तो मैं दीदी से कल बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि ये सब बीके सोल्स होंगे जो अपने माता पिता को खींच कर यहां लेकर आ रहे हैं, है ना. तो ये बाबा जो कहते हैं, ये कितना ब्यूटीफुल तरीके से हो रहा है. तो ये तो फॉक्सी फेडरेशन ऑफ गायनाकोलॉजी सोसाइटी तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया. अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा है ना, धीरे धीरे ये जो कलियुगी मेथड है ना अपने आप बंद होगा, और वो बंद हो रहा है. सबसे पहली बार मेडिकल साइंस ने जो ये एक टेक्नोलॉजी लेकर आई, जिसको IVF टेक्नोलॉजी कहते हैं, जहां पे कोई भी है ना शारीरिक संबंध की जरूरत नहीं होती है, अपने आप बंद होगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं. और हो रहा है, चारों तरफ हैदराबाद में भी जाओगे ना तो सारे जगह लिखा रहेगा आईवीएफ क्लिनिक्स। अब नेक्स्ट जो हो रहा है प्रोग्राम प्रोजेक्ट आईवीएफ कंसल्टेंट्स के पास, वो ऑलरेडी टाई अप हो गया है बॉम्बे में, नोवा क्लिनिक करके होता है वहां पे टाई अप होकर वहां पर उन आत्माओं को। तो ये सब कितना धीरे 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 प्रोसेस चल रहा है, राइट। और मैं इसका कंटेक्स्ट एक बताकर, क्योंकि है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मनमोहिनी दीदी ने शरीर छोड़ा था, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो दादी प्रकाश मणि जी ने कहा कि हम लोग सब बैठ के योग करेंगे। और कुछ दिनों के योग के बाद जब गुलजार दादी जी बाबा को भोग लगाने के लिए गए तो बाबा ने बड़े प्यार से पूछा, क्या समाचार लाई हो? तो दादी ने कहा, दीदी के निमित्त सब लोग इतने दिन योग कर रहे थे। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से बोलो बच्ची। तो बोला, बाबा दीदी के निमित्त सब बच्चे जो हैं योग कर रहे थे। तो बाबा ने मुस्कुराया और कहा कि योग किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन नीचे जाके सबको संदेश देना कि दीदी अपने में बहुत बड़ी योगी आत्मा थी, उनके लिए योग की जरूरत नहीं थी, लेकिन बच्चों ने जो योग किया उसके कारण दीदी का नीचे घर तैयार हो गया है। तो बच्चों से बोलो कि अब दीदी नीचे जाके जन्म ले सकते हैं। ये भोग का संदेश था। हाँ, यस एग्जैक्टली, लाइट ही लाइट, भोग का संदेश भी आप लोग पढ़ना। तो ये तो कितने समय से बाबा की ये प्लानिंग चल रही है, करेक्ट। तो हमको भी यही है ना, अपने आप के लिए भी तैयार करना है। चलो दूसरे जो हैं वो तो करते रहेंगे, लेकिन हमें बार बार ये संकल्प देना है। क्रिस्टन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, वे क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए, कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना। ये राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती ना, किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर होता है। गुरु तो गति देते, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है, गति माना सब बाप के पास जाते हैं, ये बातें कोई समझते नहीं हैं। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल बैठे हैं, सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं, सब है भक्ति के। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूं, मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूं, सारी सृष्टि की सदगति करता हूं, वाया गति में जाकर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। जो कल पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे, वह अब भी बनवा रहे हैं। ये जो बड़ी भूल है वह सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं तीन धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है, एक धर्म की टांग टूटी हुई है। कौन सा धर्म है वो? देवता धर्म, इसे हिलती रहती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती, एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग गुम हो तीन टांगे निकली है, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती, आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, धनी को जानते ही नहीं, निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, कौन है? शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। अभी है रात, सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहां से? सूक्ष्म वतन में भी कहां से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा एडॉप्ट करते हैं। परमपिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है, परमपिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। करेक्ट, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, वहां प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आए ये बातें कोई समझ ना सके। मतलब ये है कि शिव बाबा को जब ड्रामा प्लान अनुसार समझ में आया कि यहां पर है ना नीचे उतरना है, तो हम अक्सर कहते 1936-37, लेकिन शिव बाबा की प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी, है ना। कोई भी प्रोग्राम होता है ना, उसका प्लानिंग कितना पहले आप करते। अब जस्ट इमेजिन करिए, राष्ट्रपति जो है यहां पर शांति सरोवर में आ रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना आएंगे कि आए और ठक करके चलो मैं घूम के जाते। नहीं, बहुत पहले से प्लानिंग होती है। जैसे अभी अभी राष्ट्रपति यहां पर गए थे, गैंगटॉक सिक्किम में गए थे, और मुझे बताया गया था कि वो भोजन करने के लिए सेंटर पे जा रहे हैं। अब राष्ट्रपति सेंटर पर भोजन करने जा रहे हैं तो बाप रे, वो सिक्योरिटी तो पहले ही जाकर पूरा स्कैन करेगी, सर्व करेगी, फिर राष्ट्रपति को लेकर जाएगी। ऐसे ही होता है ना, प्लानिंग तो पहले से होती। उसी तरह बाबा कह रहे हैं कि जब बाबा को इस धरती पे नीचे उतरना था, ब्रह्मा बाबा तैयार बैठे थे, लेकिन उसके पहले बाबा ने वो सूक्ष्म मतन तैयार किया और वहां पर उनका संपूर्ण स्वरूप बनाया, फिर साकार में आकर उस आत्मा को उस तरीके से बनाया। अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड, यस यस, ओके ओके, हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो बाबा आकर जो सबसे पहले आकर हमें ज्ञान देते हैं ना, वो ज्ञान उस लाइट का ही देते हैं कि बच्चे आप आत्मा लाइट हो, मैं भी आपकी तरह वो सुप्रीम लाइट हूं। सारा खेल लाइट का है। और धीरे 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 हमारा भी संस्कार परिवर्तन कैसे होता है? लाइट के द्वारा होता है। अभी तक हम लोग ये समझते थे कि भाई हम लोग अपने मुझ आत्मा का संस्कार चेंज करना, लेकिन कभी कभी हमको लगता है हम दूसरे आत्मा के संस्कार को हम कैसे चेंज करेंगे, हमने तो अपने ऊपर काम करना है। लेकिन कल मैं वो ऑडिटोरियम में एक संदर्भ बता रहा था, इस बार का जो नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स ना 3 साइंटिस्ट को मिला। उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको वो कहते हैं क्वांटम एंटैंगलमेंट, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। वो देखो, वो भी सतयुगी दुनिया के लिए वो बन रहा है। चलो वो तो क्या है, क्वांटम पर नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जो बेसिस है, आज से बहुत वर्ष पहले है ना, एक एक्सपेरिमेंट जो आप लोग ने और हमने पढ़ा होगा, या आजकल के बच्चे पढ़ते होंगे, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कितनों ने ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुना है वो हाथ उठाओ। अच्छा, कितनों ने नहीं सुना है वो हाथ उठाओ। कितनों ने दोनों में हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाओ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो मैं आपको ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप समझेंगे ना, तो अब एक ऐसा आपको फिजिक्स के द्वारा ये क्वांटम का जो लेटेस्ट है उससे ये समझ में आएगा कि हम दूसरों के संस्कार को भी चेंज कर सकते। जो हमको कभी कभी लगता है ना, तो हम अक्सर क्लास में भी हम लोग बताते भाई दूसरों के संस्कार को आप क्या करोगे, आप अपने संस्कार पर काम करो। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो एक्सपेरिमेंट है, तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और ये हम सब पढ़े हैं, लेकिन वो अक्सर समझ में नहीं आता है लोगों को, इसलिए वो छोड़ देते, स्किप कर देते। बहुत वर्ष पहले ये डिबेट था, ये जो लाइट जो है ना, ये लाइट वेदर इट्स अ वेव और वेदर इट्स अ पार्टिकल। वेव मतलब तरंगे, पार्टिकल मतलब बिंदु, पार्टिकल। तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि वो तरंगे हैं और कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि वो पार्टिकल है। पार्टिकल मीन्स अणु। अब दोनों के बीच में बहुत डिबेट चलने लगा। तो फिर वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां पर है ना इलेक्ट्रॉन्स को भेजा गया और एक स्लिट किया गया, एक कार्डबोर्ड या रखा, उसमें से स्लिट भेजा गया और फिर डबल स्लिट किया। वो एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका जो रिजल्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट पता क्या है? रिजल्ट ये है
कि वैसे जो प्रकाश जो है ना वो तरंग है, लेकिन जब हम उस प्रकाश को ऑब्जर्व करते, प्रकाश को देखने लगते हैं, तो वो जो प्रकाश जो है ना अपने तरंग की प्रकृति को चेंज करकर वो अणु बन जाती है। मैं स्थूल प्रकाश की बात कर रहा हूं, मैं संस्कार की बात नहीं कर रहा, स्थूल प्रकाश। मैं फिर से बोलता हूं, आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आना चाहिए। वैसे, सभी बोलो वैसे, प्रकाश, या प्रकाश को और क्या कहते, लाइट, हाँ है ना, इट्स अ वेव, तरंग है, लेकिन जब आप प्रकाश को देखने लगते हो तो प्रकाश अपनी प्रकृति परिवर्तन करती है और वो तरंग से अणु बन जाती है। तो आप पूछेंगे प्रकाश को कैसे देखेंगे, उस प्रकाश के सामने ना कैमरा रखा, कैमरा रखकर जब उस इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया कैमरा ने, तो कैमरा को सिर्फ पार्टिकल दिखता है। समझ में बात। अब इसको हमारे जीवन से क्या लेना देना है, हमारे जीवन से यह लेना देना है कि हम जो व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं ना, वो वेव की तरह होता है, क्या क्यों कैसे कब कहां, क्या क्यों कैसे कब कहां, दिस इज अ संस्कार, ऊपर नीचे जो होता है। लेकिन जब आप वो सामने वाली आत्मा को उस देह से हटकर जब आप उसको प्रकाश स्वरूप में देखने लगोगे ना, सामने वाली आत्मा को, तो उसके मन में जो तरंगे चल रही है ना, वो धीरे 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 स्टेबलाइज होगी। ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और इस पर स्थूल रूप पर एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला। When this light is coming from the bulb, it is a wave. But when you start observing that light, it will change and it will become a particle. If Swami Bhai starts observing that light, it will change its nature. Absolutely. तो जो वैज्ञानिकों ने कहा वो उन्होंने स्थूल लाइट के लिए किया है। जो स्थूल लाइट है उसमें कोई चैतन्यता नहीं है, वो अपनी प्रकृति चेंज कर देती है। यही तो ब्यूटी है जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं लाइट को। तो इलेक्ट्रॉन्स को देखा गया, इलेक्ट्रॉन्स को जब इलेक्ट्रॉन्स को कैमरा रखकर उसको ऑब्जर्व किया ना, तो वो 2 स्लिट रखा ना, वो 2 स्लिट में नहीं जाती, एक ही स्लिट में, बस एक ही अणु के रूप में दिखाई देती है। जबकि आप उसको ऑब्जर्व नहीं करो तो दोनों स्लिट में तरंगे के रूप में जा रही है। इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अगर हमें अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों के संस्कार को चेंज करना है, तो बाबा कहते हैं हमेशा, जैसे संडे की मुरली में था ना, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मिक दृष्टि, सोल, द मोमेंट सोल मीन्स, सोल का फुल फॉर्म क्या है, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, यस, वो लाइट है वो। तो जब हमें किसी के भी संस्कार को चेंज करना है, आत्मा के रूप में उसको देखने लगेंगे तो उनकी प्रकृति चेंज हो सकती है। दिस इज समथिंग नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। अभी तक तो हम अपने पर काम कर रहे थे, अब दूसरों पर काम करके देखिए, अपनों पर काम करके देखिए। तो बाबा ये कह रहे हैं, परम पिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, वहां प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया, ये बातें कोई समझ ना सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परमपिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। ये किसी की बुद्धि में नहीं है, ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे, ये बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहां की बात ही निराली है, शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। तुमको सिद्ध करके बताना है गीता का भगवान कौन है। कितनी बार बाबा ने कहा निराकार शिव है, उनके गुण ये हैं। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसे बना है। अपरम पिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती है। ये सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है, ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं, बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है, बच्चों को ही बाप का शो करना है। तो कैसे शो करेंगे आज, कैसे शो करेंगे? लाइट एंड साउंड। हाँ, आज बाबा ने कहा क्या करना है देखो। हाँ, सभी बोलो सदैव हर्षित मुख, अचल स्थैर्यम डैश रहना है। हाँ, मस्त रहना है, मस्त रहना। कितनी अच्छा शब्द है ना, मस्त मीन्स आनंद की अवस्था में। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी वह जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है, मुख्य मम्मा है, यह ज्ञान सूर्य है, यह गुप्त मम्मा। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के लिए कहा, गुप्त मम्मा ब्रह्मा के लिए भी कहा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं, मंदिर भी उस मम्मा के हैं। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं। गुप्त है ना, यह माता पिता कंबाइंड है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, गीता के भगवान की महिमा अलग है, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है, तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते? मुख्य बात यह है कि गीता किसने सुनाई, वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति की सामग्री है, ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं। अच्छा
मीठे बच्चों पे चुनवानी, बाप व दादा का याद प्यार और गुणवानी, मीठे मीठे रुवानी बच्चों पे चुनवानी, बाप की नमस्ते।
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। हर्षित मुख, अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। आज का वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले, असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकली है। साइंस की शक्ति भी इस शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, वे आप योगी तू आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे, परमात्मा तो बहुत ऊंचा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते, हमने तो उसे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। आज का स्लोगन है, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सभी थोड़ा बोलिए, मैं निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले, मैं सच्चे सच्चा सेवाधारी हूं। तो निमित्त और निर्माण, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट एंड आई एम ए वेरी ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, हम्बल पोलाइट नम्रचित विवेक, है ना। तो वो ऐसे ही सच्चे सेवाधारी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। तो यह शब्द सिद्ध करता है, साबित करता है कि आत्मा परमात्मा अलग अलग दो चीज है। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान ना होने के कारण वो तो इस शब्द का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वह आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूं। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा से मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती, ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। दूसरी पॉइंट है, वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे। इसे अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इस पांच विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है ये कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है। यह तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकते। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, असल में मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली गुण क्या है, जब ये बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली थी मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है, अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। प्रश्न, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? उत्तर, गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुमको इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। तो सारा मुरली आज बाबा ने गीता के बारे में कहा। तो गीत क्या था? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो आज की पॉइंट है 14th अव्यक्त इशारा. जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच करो. सदा ये स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर मैं ही यही बन रहा हूं. जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच कर सकेंगे उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे. जितना जितना अपने आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच कर सकेंगे उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे. राइट ना? तो हमको आदि अनादि संस्कार को याद करते हुए है ना धीरे 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 उसको जीवन में लेकर आना है. हाँ जी, राइट. दैट इज व्हाट इज वेरी. तो आज का दिन हमें क्या करना है? बाबा ने बहुत प्यार से कहा, याद है सबको? हाँ, चार पॉइंट बताई थी. हर्षित मुख. यस, हर्षित मुख. नंबर टू अचल. नंबर थ्री स्थिर. और लास्ट मस्त रहना है. मौलाई मस्त, खुशी में, आनंद में. और इसीलिए कल हेल्थ और हैप्पीनेस में यही बता रहे थे, जितना हम खुश रहते ना वो हैप्पी हार्मोन्स, जितना हम खुश रहते. मैं एक पॉइंट वो कल का हेल्थ के बारे में बताकर दो मिनट में वाइंड अप करूंगा, क्योंकि टुडे इज अ वर्ल्ड डायबिटीज डे है ना. तो इसीलिए डायबिटीज में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हमारा शरीर जो है ना, ये प्रकृति के 5 तत्व से बना हुआ है. कौन कौन सा प्रकृति के 5 तत्व? हाँ. एक बार मम्मा ने कुछ महीने पहले मम्मा के इस मनन चिंतन में मम्मा ने कहा था, इसको स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लेकर जाओ. तो इट इज एन ऑर्डर. तो स्थूल है धरती, बोलो सभी, धरती. नंबर टू इज जल. फिर तीसरा है अग्नि. चौथा है वायु. पांचवा है आकाश. तो आप अगली बार बोलेंगे ना तो इस ऑर्डर में बोलना, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश. बोलो. अब रिवर्स बोलो. हाँ, आकाश, वायु, हाँ, अग्नि, जल और पृथ्वी. तो हमारा शरीर भी उस 5 तत्वों से बना हुआ है. तो हमारा शरीर का जो धरती तत्व है वो क्या है? हमारे मसल्स एंड बोन्स. जल तत्व हमको पता है, द फ्लूइड, द ब्लड एक्सेट्रा. अच्छा, फिर कौन सा है नेक्स्ट? वायु, हम जो श्वास लेते. अच्छा, अग्नि क्या है? वो जठर अग्नि, उसको फर्नेस कहते हैं. अच्छा, आकाश तत्व कौन सा है शरीर में? अक्सर करके कहते स्पेस. अब सोचने की बात है, जहां पर वायु है, पूरे शरीर में वायु तो है ना, तो कहां एम्प्टी स्पेस किधर है? कहां? दिमाग में. यहां एम्प्टी नहीं, नहीं, यहां तो ज्ञान से भरा है ना बहन जी. अब वो कहते हैं यहां एम्प्टी स्पेस. नहीं नहीं नहीं, हम बाबा के बच्चों का एम्प्टी स्पेस किधर है? पूरा ज्ञान से भरा है. ब्रेन में भी कोई एम्प्टी कैसे हो सकता है? आइदर देयर विल बी फ्लूइड और देयर विल बी एयर. वैक्यूम किसको कहते हैं? दैट इज एम्प्टी स्पेस. वैक्यूम किसको कहेंगे जिसमें एयर भी नहीं हो? तो हमारे शरीर का आकाश तत्व बताइए कौन सा है? सेल के अंदर भी होते हैं. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, सेल के अंदर भी तो हवा तो हो सकता है ना. एक्चुअली जो है ना, हाँ, जो आकाश तत्व है ना, वो बाबा ने आज बताया, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है. सूक्ष्म शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर के बाद फिर आत्मा, फिर परमात्मा. इसलिए 7 सिस्टम, जो शरीर का जो है ना, 7 सिस्टम है. ये 7 सिस्टम इस गुणों के साथ जुड़ा हुआ है. करेक्ट. तो डिजीज क्यों होता है? डिस इज, जब आत्मा के अंदर वो गुण चेंज होते हैं ना, तो सबसे पहले वो सूक्ष्म शरीर को डिस्टर्ब करता है. द एथरिक बॉडी, द एनर्जी बॉडी, द बॉडी विच इज मेड अप ऑफ लाइट, वो डिस्टर्ब होता है. ऐसे कभी कभी ना लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर जरा मुझे चेक करो. तो डॉक्टर उसको बहुत सारा स्कैन बताता है, MRI स्कैन करो, PT स्कैन करो, CT स्कैन करो, ये करो, वो करो. तो फिर वो रिपोर्ट देखता है, तो डॉक्टर कहता है, नहीं भाई, आपका रिपोर्ट तो सारा नॉर्मल है ना, एवरीथिंग इज ओके. वो कहता, नहीं डॉक्टर, मेरे को तो बहुत तकलीफ हो रही है. बोले, नहीं भाई, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, थोड़ा विटामिन ले लो, ये ले लो करके छोड़ देता डॉक्टर. अब फिर कुछ समय के बाद फिर वो व्यक्ति को डिस्टर्बेंस होता है, फिर वो डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर फिर कहता है अच्छा चलो एक काम करो फिर से ये रीचेक करते हैं। तो चेक करता है तो दिखाई देता है कहीं ट्यूमर है या कहीं कुछ गड़बड़ है, तो डॉक्टर कहता है आई एम एबल टू सी ए ट्यूमर, लेट मी डू द बायोप्सी। तो बायोप्सी लेते हैं तो इट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर। तो डॉक्टर कहता है हेलो ये तो सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर हो गया है, आप थोड़ा पहले आते थे तो हम मदद करते थे। बोला डॉक्टर आपके पास पहले आया था हम, देखो ये रिपोर्ट है। हाँ ये बात तो राइट है। तो इज द डॉक्टर नॉट करेक्ट? नो, द डॉक्टर इज ऑल्सो राइट, द इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, डिस ईज होते हैं, तो वो जो डिस्टर्बेंस जो है ना वो सूक्ष्म शरीर में हो रहा है। सूक्ष्म शरीर में व्यक्ति को डिस्टर्ब हो रहा है, उसका फिजिकल सिस्टम को भी लग रहा है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मेरे को कहीं दर्द दे रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो टेस्ट करता है। तो डॉक्टर का जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो हार्डवेयर की टेस्टिंग के लिए बना हुआ है, वो आकाश तत्व के लिए बनी नहीं है, वो धरती जल अग्नि वायु तक पहुंच सकता है। तो जब वो रिपोर्ट देखता है तो वो सब ठीक है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस को मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए डिस्टर्बेंस बढ़ते 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 जब वो शरीर में वो ट्यूमर के रूप में आता है तब वो डॉक्टर देखता है, बट बाय द टाइम इट इज टू लेट। इसलिए सबसे पहले सूक्ष्म शरीर को ठीक रखना जरूरी है। हाँ, आजकल के बहुत सारे रोग आउटसाइड सिचुएशन कारण भी होते हैं, इसलिए क्योंकि टुडे इज अ वर्ल्ड डायबिटीज डे, तो मेरे इस कोविड के समय पर मेरी एक स्टूडेंट, शी कंप्लीटेड अ पीएचडी, और इनका टॉपिक था रिवर्सिंग टाइप 2 डायबिटीज थ्रू राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। तो जूम पर बहुत लोग थे, और क्योंकि वो सब लोग घर के अंदर बंद थे एंड शी वॉज डूइंग हर पीएचडी, तो मैंने उनको जब किया मैंने कहा देखो सबसे पहले हमको पता चलना चाहिए कि ये डायबिटीज होता क्यों है। तो जब हम भोजन खाते हैं ना तो भोजन को पचाना पड़ता है, पचाने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अवर पैनक्रियास। तो पैनक्रियास वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है टू डाइजेस्ट द फूड। अब कुछ समय के बाद जब पैनक्रियास वो बीटा सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाता है जिसके कारण उसको डाइजेस्ट करने के लिए जितनी इंसुलिन चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, इंसुलिन नहीं मिल रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर हमको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, सिंपल मोटे तौर पर अगर हम देखें तो। तो सबने कहा हाँ ये तो हमको पता है। तो मैंने कहा अब आपको जब पता है तो आप सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है विच इज हेल्पिंग यू फॉर क्रिएटिंग इंसुलिन इज पैनक्रियास। सबने कहा हाँ। तो मैंने कहा, वो जूम पर मैं था, तो मैंने कहा आप बताओ कि आप सबसे पहले ब्रेन कहां पर है, हार्ट कहां, सबको तो पता है, लेकिन पैनक्रियास किधर पर है बताओ। मैंने कहा वीडियो ऑन करके बताओ, तो कुछ तो आप बताइए कहां पर है पैनक्रियास। कितनों को पता है कि शरीर में पैनक्रियास किधर है, किनको पता है वो हाथ उठाओ, किनको नहीं पता पैनक्रियास किधर है वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाओ। वाह एकदम मस्त में रहते हैं लोग, बहुत अच्छा सी रहना है। यस, तो मैंने कहा काम करते हैं, ये पैनक्रियास जो ना फ्रंट व्यू में नहीं है, इट इज है ना हैंड पीछे की तरफ है। तो फिर मैंने कहा चलो, कुछ लोग कह रहे हैं ये कहीं पे तो है पीछे पीछे कहीं पे तो सेटिंग किया हुआ है प्रकृति ने। तो मैंने कहा अच्छा पैनक्रियास का शेप कैसे मालूम होना चाहिए। तो मैंने कहा आई विल सेंड यू एन यूट्यूब वीडियो, उस यूट्यूब वीडियो में ना आपको पैनक्रियास कहां पर है, क्या काम करता है और कैसा दिखता है मैं बताऊंगा। बोला हाँ हाँ सर ये तो बहुत जरूरत है। मैंने कहा आपका होमवर्क ये है कि आज किचन में जाकर जो आटा गूंथते हैं ना वो पैनक्रियास का एक शेप बनाना, राइट, और फिर बच्चों से कलर पेंसिल्स और ये सब ले लेना, जैसे यूट्यूब में देखा वैसे ही पैनक्रियास को कलर करना, उसका फोटो खींचना और मुझे व्हाट्सएप में भेजना। मैंने कहा ये करना है। अब उस समय कोविड का समय था, सब लोग घर के अंदर बंद थे, सबने ठका ठक करके है ना व्हाट्सएप में भेजा, है ना। बाप रे, किसने कहा स्वामी भाई फॉर द फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड माई पैनक्रियास इज सो कलरफुल, वाओ वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, और पैनक्रियास का शेप ऐसा होता है, इट इज लाइक दिस। तो फिर दूसरे दिन मैं जब मिला उनसे मैंने कहा कैसा रहा अनुभव, बहुत अच्छा लगा, बाप रे हमारा पैनक्रियास ऐसा दिखता हमको मालूम ही नहीं था। किसी ने कहा लेकिन कल ना पत्नी ने थोड़ा डांटा भी। हमने कहा क्यों डांटा उसने। बोला अभी तक तो किचन में आते नहीं थे, अपने पैनक्रियास के खातिर पहुंच गए, आटा गूंदने लगे, राइट। मैंने कहा ओके नाउ व्हाट यू टू डू इज, राइट, अब आपको यह करना है कि जब आप मेडिसिन लेते हो ना तो यहां पर मन को यूज करना है, तो आपको यह महसूस करना पड़ेगा शरीर के हर सिस्टम को काम करने के लिए एक गुणों की जरूरत है। तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग पैनक्रियास को काम करने के लिए कौन से इमोशन की जरूरत है, It's happiness. खुशियां. खुशी जैसी खुराक नहीं. आपके सामने 56 प्रकार का भोजन रखा हुआ है और आपको लग रहा है मैं खाऊं खाऊं और अचानक आपको फोन कॉल आ गया एंड देयर इज सम ट्रेजिक न्यूज. भोजन करोगे आप? नहीं. तो जब मन दुखी होता है राइट, आत्मा में वो सुख के वाइब्रेशन नहीं जाते, इसलिए सबसे पहले सूक्ष्म शरीर डिस्टर्ब होता है. सूक्ष्म शरीर डिस्टर्ब हुआ तो पैनक्रियास और डाइजेस्टिव सिस्टम को जो खुशी की जरूरत होती है वो नहीं मिलता है. और जब नहीं मिलता उसको उतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इमोशनल वोल्टेज, तो वो काम करना बंद कर देता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइट जो है, इट इज डिजाइन फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज. अगर उसको उतना वोल्टेज नहीं करेगा ना तो टिक 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 करेगा और आपको डिस्टर्ब करेगा. आप कहेगा भाई इससे अच्छा बंद करो, है ना, वो टिक टिक कर रहा है. या तो आप उसको पूरा ऑन करो, नहीं तो बल्ब को चेंज करो, नहीं तो उसको बंद करो. यही होता है हमारे पैनक्रियास के साथ. पैनक्रियास को खुशी का वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, पैनक्रियास को निकालो या इंसुलिन लेते रहो, नहीं तो उसको बंद करो. लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि उसको एक्टिवेट करो ना, उसका जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसको कंप्लीट करो. तो डाइजेस्टिव सिस्टम और पैनक्रियास को बहुत खुशी की जरूरत है. तो मैंने सबको ये कहा, कल आपको पता है क्या करना है? कल आपको ये करना है कि दवाई लेते वक्त मुस्कुराते हुए दवाई लेना और मन से देखना, जैसे ही आपने दवाई खाया वो दवाई धीरे धीरे, अब आपको पता है पैनक्रियास किधर है. हाँ यहाँ सर पता है, कलर भी पता है, बहुत अच्छा. मैंने कहा धीरे धीरे कहना, देखना कि वो जो है ना वो दवाई जो है धीरे से जाके पैनक्रियास को टच कर रहा है और पैनक्रियास को गुदगुदी हो रही है और पैनक्रियास बहुत खुशी से मस्त में डांस कर रहा है. ये आपको करना पड़ेगा, जीरो कॉस्टिंग, नो साइड इफेक्ट. हाँ सर. और मैंने कहा आपको जो दवाई खाना खाओ, जो दवाई के बीच में हम लोग वो नहीं करेंगे, आप इंग्लिश हो हिंदी हो मराठी है, जो दवाई खाना खाओ, हम लोग इंटरफेयर नहीं करते. लेकिन मेडिटेशन इज नॉट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, मेडिटेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन. मैंने कहा आप करके देखो. और कुछ लोग ने तो ना अपने पोतरे को सामने बैठा दिया, बोले जब मैं खाऊंगा ना तो मेरा फोटो खींचना और मैं स्वामी भाई को ना फोटो भेजूंगा, मुस्कुराते हैं और वो ऐसा कर रहा था, हाँ सर पैनक्रियास को गुदगुदी हो रही है, खुशी में हो रहा है और वो मन से देख रहा है पैनक्रियास इतना खुश हो रहा है, मस्त में डांस कर रहा है करके. जब वो देखने लगता है, और नेचुरली इतने सारे लोग जोड़े थे और उनको हम लोगों ने सबने कहा था, सब लोग अपना है ना शुगर का रिपोर्ट लेकर आना. और 3 महीने उन पर काम किया, प्री एंड पोस्ट, एंड दिस स्कॉलर गॉट ए पीएचडी डिग्री. जीरो कॉस्टिंग, नो साइड इफेक्ट, नंबर वन. नंबर टू, एक बात बताना चाहूंगा ऑन द वर्ल्ड डायबिटीज डे, कभी यह संकल्प नहीं करना कि मेरे माता पिता डायबिटिक थे इसलिए मुझे भी डायबिटिक होना पड़ेगा. नो, एब्सोल्युटली नॉट. हमारे शरीर के अंदर सभी सेल्स होते हैं, गुड सेल्स भी होते हैं, बैड सेल्स भी होते हैं. किस सेल को आपको इमर्ज करना है, एक्टिवेट करना है, यह आपके हाथ में है. बहुत सुंदर किताब निकली, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ. आप अपने डीएनए प्रिंट को आप मर्ज रख सकते हो, उसको एक्टिवेट कर सकते हो. बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सिचुएशन, इतना सिचुएशन में हमारे अंदर कैंसर सेल्स भी होते हैं, सब सेल्स होते हैं, लेकिन हम उसको कैंसर सेल्स को बोले तू प्यार से सोता रहे, संगम युग इज वेरी इंटरेस्टिंग युग, मुझे अपने जीवन जीने दे, बोलेंगे तो सोएगा. आप उसको उठाते रहते, उठना उठना, और वो उठना कैसे बोलेंगे, दुखी अशांत होंगे तो इट्स अ फ्रीक्वेंसी मैचिंग. जो रोग सेल्स होते हैं ना उसकी एनर्जी लेवल इज वेरी लो, तो जब आप आत्मा में वो लो एनर्जी क्रिएट करोगे तो सूक्ष्म शरीर में वही एनर्जी, और वही एनर्जी इसको एक्टिवेट करती है. गुड सेल्स इज एनर्जेटिक सेल्स, मस्ती वाला और हर्षित मुख, आनंद शांति खुशी. तो जब आप आत्मा में वो करोगे तो सूक्ष्म शरीर भी उसी वोल्टेज में फ्लक्चुएट करेगी. सूक्ष्म शरीर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है तो वो गुड सेल्स को एक्टिवेट करेगी. सो दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग. तो आज पूरे दिन में कौन कौन एकदम हर्षित मुख खुश रहेंगे, वो जरा हाथ उठाएं. राइट. कौन कौन अपने पैनक्रियास को भोजन करते वक्त महसूस करेंगे कि पैनक्रियास को बहुत गुदगुदी हो रही है, वो जरा हाथ उठाओ. अरे भाई सर फेडरिक विल बी सो हैप्पी. यस ओके या वेरी गुड. इसलिए बाबा कहते ना स्वस्थ रहो बच्चे, स्व के अस्तित्व में रहो. तो आज का दिन आपका बहुत वंडरफुल हो, ब्यूटीफुल हो, चीयरफुल हो, है ना, श्री कृष्ण जैसा है ना आज का आप जीवन हो, एकदम स्थिर आनंद मुस्कुराता हुआ जीवन आज का दिन को आपको निकालना है. ठीक है, थैंक यू, ओम शांति. चलो. बाबा को याद करते
with